أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله، ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بات کر رہے ہیں، ان کی زندگی کو دیکھ رہے ہیں، اور بہت سارے سبق ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے ان میں موجود ہیں، جو واقعات ان کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اب یہ چونکہ ان کی زندگی کا جو کافی حصہ ہے وہ ہمارے پاس تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ان کی زندگی کے واقعات ہمیں ملتے ہیں، کیونکہ یہ دور بہت خوشحال دور ہے. تو لہٰذا جس کو کہتے ہیں نا گولڈن پیریڈ، وہ گولڈن پیریڈ تھا ان کا جو خلافت تھی مسلم امہ کے لیے. تو اس میں بہت ساری چیزیں ان کی ریکارڈ کی گئی ہیں جو کہ باقی آپ صحابہ کی نہیں اس طرح سے آپ کو مل سکیں گے. اب میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں، ایک یہ ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اس کو ختم کر دیں ان کی شہادت کا واقعہ کر کے، اور آج جو کافی اور چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی وہ کر دی جائیں، تو نیکسٹ ان کے بارے میں لاسٹ کلاس ہو جائے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو آپ ون ٹائپ کیجئے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ابھی ہم اور ڈیپتھ میں ان کی زندگی کو پڑھ لیں، بہت ساری چیزیں ان کی زندگی کے حوالے سے ہمارے سامنے پوری پوری کتابیں ہیں. آپ دیکھتے ہیں میرے پاس کتنی ساری کتابیں صرف اکیلے ان کی ذات کے اوپر جو لکھی گئی ہیں. تو اگر آپ وہ سمجھتے ہیں تو آپ پھر ٹو ٹائپ کریں، مگر یہ ہوگا کہ پھر ہم انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ہماری کلاس جو ہوگی وہ لاسٹ کلاس ہوگی. پھر انشاءاللہ میں عمرے پہ چلی جاؤں گی، اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے دسمبر کی چھٹیاں ہیں، تو جنوری میں پھر دوبارہ ہم سٹارٹ کر سکیں گے. تو اگر آپ اس طرح چاہتے ہیں تو پھر آپ ٹو ٹائپ کیجئے کہ ہم حضرت عمر کی ہی جو ان کی زندگی ہے اس کو ہم مزید ڈیٹیل میں دیکھیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم میں ہم اس کو ختم کر دیں اور اس کے بعد پھر جنوری سے سٹارٹ کریں، تو پھر آپ ون ٹائپ کیجئے. اچھا، ابھی تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹو ٹائپ کر کے آپ بتا رہے ہیں کہ نہیں ہم ان کی زندگی کو مزید ڈیپتھ میں دیکھیں. ٹھیک ہے، کافی سارے ماشاءاللہ آپ لوگوں کی طرف سے رسپانسز آئے ہیں، الحمدللہ. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ لوگ سیکھ رہے ہوں گے ان کی زندگی سے کافی کچھ. پورا ہفتہ اثر رہتا ہوگا کچھ نہ کچھ ضرور، کیونکہ اتنی زبردست شخصیت ان کی ہے، اتنے زیادہ ہمیں ان کی سے اپنی زندگی کے لیے جو رہنمائی ملتی ہے کہ یقین جانے میرے تو خود ذہن کے اوپر نہ پورا ہفتہ یہ اثر رہتا ہے کہ ان کی زندگی کیسی شاندار زندگی ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر ان کی زندگی سے ہمیں ذرے کے برابر بھی مل جائے نا، تو پتہ نہیں ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں، ذرے کے برابر بھی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ انسانی جتنی ہے اس کے حکمرانوں میں، ایون یہ کہ مسلم حکومتیں بھی جو آئیں بعد میں، یہ نہیں بات ہو رہی کہ غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہی، مگر خلفائے راشدین کے بعد اور بھی باسی خلافت، عموی خلافت، عثمانی خلافت چلی ہے، تو ان میں بھی ہمیں وہ چیز نہیں نظر آئی خلفائے راشدین کے بعد جتنی آئیں، سوائے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے، کہ جن کو ہم کہہ سکیں کہ انہوں نے ان کے نقش قدم کو اپنایا. گو کہ وہ سب کے سب آج کی حکومتوں سے تو بہت بہتر ہیں، مگر اسٹل ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس پائے تک کہیں قریب قریب ہی پہنچے. بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ اسلام خلافت خلیفہ بننے سے پہلے، بلکہ ذرا جس کو کہتے ہیں ہم ہائر مڈل کلاس جو ہوتی ہے اس سے بلانگ کرتے تھے، لیکن جس وقت خلافت کی ذمہ داری انہوں نے سنبھالی ہے، تو جہاں اور بہت سی چیزیں انہوں کے اپنی ذات میں چینج آئی ہیں، وہاں ایک یہ بھی ہے کہ ان کا لائف سٹینڈرڈ جو تھا وہ پہلے سے نیچے چلا گیا. بجائے اس کے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ چاہے کوئی بھی ہوتا ہو، ایک خلیفہ تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اگر ایک گورنر کا، ایک وزیر کا، منسٹر کا بھی ہوتا ہو نا، تو ان کے لائف سٹینڈرڈ میں آپ ایک اپلفٹ دیکھتے ہیں، ऊपर को जाता है, नीचे को किसी का जाते हुए नहीं देखा, लेकिन इन्होंने अपने आप को ऐसे किया कि जैसे ये अपनी कौम के खादिम हैं। और हम देखेंगे भी आज ऐसे वाकयात हैं जिसमें पता चलता है कि अपने आप को ऐसे ही समझते थे। आप जितनी हुकूमतों के निजाम देख लें, आप पूरी इंसानियत की तारीख उठा के देख लें, तो हमें इनका कोई सानी नजर नहीं आता। और देखें, एक हुकूमत पहले से इस्टेब्लिश हो, एक बंदे ने आके संभाल ली, वो एक अलग चीज होती है। एक ये है कि एक बंदे ने नए सिरे से हर चीज को स्टार्ट करना है, क्योंकि इतनी बड़ी तो हुकूमत थी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में तो क्या मदीना खैबर है, बस वहां तक हुकूमत गई थी। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर सिर्फ 2 साल का था। उस 2 साल में क्या हो सकता है? अभी वतुहात का सिलसिला शुरू हुआ था, अभी मुसलमान निकले थे यहां से, तो वो उसमें भी ऐसी कोई चीज की गवर्नेंस के एतबार से कोई ऐसी चीज के लिए जरूरत नहीं थी। लेकिन जब इनका दौर आया, और मैंने आपको जैसे बताया कि फतुहात का सिलसिला इतना बढ़ गया, कहाँ कहाँ तक इस्लाम चला गया, कहाँ कहाँ तक इस्लामी ममलिकत की सरहदें कहाँ तक पहुंच गई। अब इसके अंदर देखें, एक होता है फतह करना, वो भी एक मुश्किल काम है और बड़ा काम है, लेकिन उसके अलावा एक काम है उन जगहों को गवर्न करना, उन जगहों पर सही इंसाफ रखना, वहां पे अदल का निजाम कायम करना, उन जगहों में इसी तरह अमनो अमान और इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर का निजाम सही से रहना, ये ज्यादा मुश्किल चीज है। एक मुल्क को संभालना, एक जगह को संभालना ही मुश्किल हो जाता है। कहाँ ये कि वहां तक सरहदें पहली में अफ्रीका में गई हुई है, यूरोप तक गई हुई है, किधर किधर पहुंच गई है, एशिया में कितनी जगह पे पहुंच गई है, और फिर उसको संभालना, उसकी गवर्नेंस सही से करना, अदलो इंसाफ का बोलबाला होना, ये बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। और जबकि उस जमाने में कोई भी ऐसे कम्युनिकेशन के जराए नहीं थे जैसे कि आज हैं। उन हालात के अंदर ये खबरगीरी रखना और उसके लिए खुद तड़पना और खुद को पहले एग्जाम्पल के तौर पर पेश करना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब अमीर ही जो बड़ा है वो ही अगर बिगड़ जाए तो सारा माशरा बिगड़ जाता है। लिहाजा आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा उन्होंने अपने ऊपर सख्ती की। आप देख, मैंने आपको जैसे बताया था मर्दमशुमारी कराई, इसका आज के निजाम जो इस वक्त है दुनिया में उससे भी ज्यादा बेहतर थी कि हर मर्द, हर औरत, हर बच्चा, उसका नाम, उसकी जगह वो लिखी गई, ताकि बैतुल माल में उनका जो हिस्सा है, या जिसको वजीफे देने हैं, या जिनकी दीनी खिदमात हैं, या जो जिहाद में आगे हुए हैं, उनका हर एक का वजीफा उस तक पहुंचाया जाए। इसीलिए आप देखें जो बदर में शरीक हुए उनका सबसे ज्यादा था, फिर उसके बाद सुलह हुदैबिया में शरीक होने वालों का, आपको पता है बैतुल रिजवान में जो शरीक हुए थे उनका मुकाम रखा गया, फिर उसके बाद जिन्होंने मुर्तदीन के खिलाफ जंगें लड़ी उनका मकाम उनको दिया जाता था, रोम और फारस के साथ जो मार्के हुए उनका उनको दिया जाता था। तो इस तरह से तकसीम की जाती थी, ऐसे नहीं था कि सबको एक जैसा, या किसी को अपनी फेवरेटिज्म में किसी को ज्यादा किसी को कम देना, ऐसा नहीं था। और ये जो जंगी हैं इनका मुख्तसरन हाल भी इंशाल्लाह ताला आप जब हम डिटेल में जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा कहीं टच कर लेंगे, मगर आप देखेंगे कि इट्स नॉट इजी। ये कह देना आसान है कि इस्लाम वहां तक फैल गया, जंगे हुई, वहां भी वो भी फतह हो गया, जब आप उनकी डेप्थ में जाते हैं और यू यू टेंड टू फील इट कि कैसा उस वक्त हो रहा होगा, कैसे वो लोग अपने घरों से निकले, कहाँ कहाँ तक पहुंचे, कितने कितने खतरात से उनको निपटना पड़ा, कैसे डिसीजन मेकिंग होती थी, तो आप हैरान हो जाते हैं कि अल्लाह अकबर। ये नहीं कि उनको प्लेट में लाके हुकूमतें मिल गई थी, उनको बहुत सेक्रीफाइसेस देनी पड़ी थी। और फिर मैंने आपको जैसे वो बताया था कि जब बैतुल मकदस पहुंचे थे, काफी दिन वहां पे भी रहे थे, अब इससे अंदाजा लगाएं कि हजरत बिलाल ने आके शिकायत की कि अमीरुल मोमिनीन हमारे अफसर जो हैं वो परिंदों का गोश्त और उमदा आटे की रोटियां खाते, जबकि आम मुसलमान इससे कम मेयार का खाना वो मुश्किल खाते हैं। तो उन्होंने अफसरों को तलब कर दिया कि आप कैसे ये करते हैं, तो उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन इस मुल्क में सारी चीजें इतनी सस्ती हैं जितनी कीमत पे आपके वहां पर मदीना में और इन जगहों में रोटी और खजूर मिलती, यहाँ पे उतने में परिंदों का गोश्त मिल जाता है, उमदा आटा मिल जाता है, लेकिन कई जगह महंगाई होती कई जगह सस्ता होता है। तो फिर मतलब तुमर उनको कुछ कह तो नहीं सके, उनको मजबूर तो नहीं कर सके, लेकिन हुक्म दिया कि माले गनीमत और तनख्वाह के अलावा हर सिपाही के लिए खाने की मिकदार और उसकी नौयत भी फिक्स कर दी जाए कि इससे ज्यादा का ऐसा खाना नहीं खा सकते। मतलब देखिए ना, अब वो हर चीज को किस तरह से बैलेंस करके चलने वाले थे कि अपने अफसरान के ऊपर भी ऐसी नजर होती थी और फिर भी डरते रहते थे। एक दफा सलमान फारसी से पूछा, क्या मैं बादशाह हूं या खलीफा हूं ये बताओ? तो उन्होंने जवाब दिया, अगर आपने किसी जमीन का खराज वो एक दिरहम से भी कम हो लिया और इसको गलत जगह पे खर्च किया तो आप बादशाह हैं, और अगर आपने ऐसा नहीं किया और मुसलमान के हकूक का ख्याल रखा तो फिर आप खलीफा हैं। ये सुन के रो दिए। और आप ये नोट कीजिएगा, मैंने आपको सुनाया मदनी दौर भी मक्की दौर भी, आपको उसमें से हम गो थ्रू हुए हैं, लेकिन आप देखेंगे नोटिस आपने किया कि इतनी जगह वहां पे नहीं आता कि हजरत उमर जो है रो पड़े। इवन आप देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के ऊपर भी शुरू में एक रोए नहीं थे, अपनी तलवार लेके खड़े हो गए थे, उसके बाद जब यकीन आया तो फिर गिर गए जमीन पे और रोने लगे। लेकिन जब आप देखते हैं खिलाफत के उस पे आ गए हैं तो उसके बाद कितनी जगहों पर आप ये पढ़ते हैं कि रो पड़े, कि इससे पता चलता है कि उनका दिल कितना नरम था और ये भी कि कितना ज्यादा मुहासिबे का ख्याल था। असल में जब इंसान को मुहासिबे का बहुत ज्यादा फिक्र हो जाती है ना, तो फिर वो कोई चीज को भी ऐसे जाने नहीं देता, फिर उसकी परेशानी इतनी ज्यादा होती है कि कहीं मुझसे इधर उधर कुछ ना हो जाए। इवन अपने आप को ही क्या, अपने जो अंडर देखे, जैसे ये मैंने इन लोगों का बताया, अपने जो अंडर थे अपनी मुमलिकत में जो गवर्नर वगैरह थे उनके लिए भी उनके खाने पीने का फिक्स कर दिया गया कि इससे ज्यादा नहीं है आप कर सकते। और एक दफा इसी तरह का कुतुबा बिन फरकत आजरबैजान के हाकिम बन के वहां पहुंचे तो उनके सामने खजूर और घी से तैयार कर दवा हलवा पेश किया गया। उत्तबा जो थे ना उनके सामने, वो जाहिर हाकिम बन के आए थे तो लोगों ने उनको खाने को दिया तो बहुत मजेदार था। तो उत्तबा के दिल में ख्याल आया, क्यों ना ऐसा अच्छा हलवा अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में भी मैं भेज दूं। तो उन्होंने उस हलवे के दो बड़े बड़े टुकड़े तैयार करवाए और दो आदमियों के साथ हजरत उमर की खिदमत में भेज दिए। उमर रजी अल्लाह तआला ने इन्हें खोल के देखा तो पूछा, ये क्या है? उन्होंने कहा, ये घी और खजूर का तैयार शुदा हलवा है। यानी अब ऐसा नहीं था कि वो दौर हो, आप उन टाइम्स को भूल जाएं जिस टाइम्स के अंदर मुसलमानों के ऊपर इतनी ज्यादा गुर्बत और इतना फकरों फाका था। ये अब उस टाइम से निकल चुकी हैं। ऐसा नहीं कि वो आप जो उनकी बातें पढ़ रहे हैं वो इस वजह से हैं कि वो उनके जैसे हदीस की किताबों में आता है कि एक दफा खुतबा देने के लिए खड़े हुए तो तहबंद के अंदर 12 पेवंस थे, 12 पैचेस थे, पेवन थे जो यानी पैचेस लगे हुए थे 12। अब इससे पता चलता है ना कि उनका लिबास क्या था। लेकिन वजह ये नहीं थी कि कोई गुर्बत थी, खाने को नहीं मिल रहा था या कुछ ऐसा नहीं था। इतना अच्छा दौर था कि देखिए वहां पे उनके पास इतना जबरदस्त खाना तैयार करके भेजा गया। और ये पूछा इन्होंने कि क्या वहां सब लोग इसी तरह की खुराक खाते हैं? जवाब दिया गया, नहीं। इस पर आपने हुक्म दिया इसे वापिस भेज दो। फिर उतबा के नाम एक तहरीर लिखी कि ये तुम्हारे बाप का कमाया हुआ माल नहीं है, तुम्हें ऐसी ही खुराक इस्तेमाल करनी है जो वहां के आम लोग खाते हैं। और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आम और रमादा में जो खाक उड़ने का साल, यानी जब कहत आ गया था ना खाक उड़ने का साल, इसलिए उसको कहते हैं कि हर तरफ तो खाक उड़ती भी नजर आती थी, खाने को कुछ भी नहीं था, तब भी इनका ये हाल था कि इन्होंने अहद कर लिया हुआ था कि मैं नहीं खाऊंगा जब तक, मैं वो वाला खाना नहीं खाऊंगा जब तक के बाकी मुसलमान ना खाएं, बाकी मुसलमान खाएंगे तो मैं खाऊंगा। हालांकि इनके ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं थी, बैतुल माल तो इनके अंडर ही था, और बल्कि लोग ला के इनको गिफ्ट देते थे कि भाई आप खा लें, कुछ खरीद के ले आते थे कि आप खा लें। लेकिन एक दफा अंगूर किसी ने लाके दिए तो एक एक तोड़ तोड़ के ना सारे लोगों में बांट दिए, खुद नहीं खाए। आपको मैंने पहले भी बताया था कि एक कोई खादिम जो है वो 40 दिरहम में कुछ खरीद के दूध और इस तरह का कोई कटोरा कहीं बिक रहा था, घी और ये वो लेकर आ गए। तो फरमाया नहीं, अल्लाह अकबर, फरमाया इतना महंगा क्यों लेकर आए, इनको सदका कर दो। और ना इनका ये हाल हो गया था कहत के सालों में कि इतना रोते थे, इतना अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाते थे कि अल्लाह मेरे दौर में कहीं ये ना हो कि मेरी राया, मेरे मेरे ये उम्मत जो है ये तबाह हो जाए, मेरे दौर में ऐसा ना हो। मैंने आपको बताया था ना, गुड़ गुड़ की आवाजें पेड़ से आती थी, तो फिर कहते हैं कि नहीं तुम बोलो, ये गुड़ गुड़ करो या खामोश रहो, तुम घी मांगते हो, अल्लाह की कसम नहीं, मैंने नहीं तुम्हें देना जब तक मेरा राया का हर कोई शख्स घी ना खा ले। तो सहाबा को ना इनकी इतनी फिक्र थी, वो कहते हैं, हम देखते हैं लिखा हुआ आता है किताबों में कि वो कहते थे हमें इतना ज्यादा कहत की फिक्र नहीं थी जितनी हमें इनकी जान की फिक्र पड़ गई थी। हमें लगता था कि ये तो इनकी अपनी जान गंवा देंगे, इतना ये गम कर रहे थे, इतना गम कर रहे थे कि मुसलमानों के ऊपर कहत आ गया, अपनी राया की फिक्र करते थे। तो एक दफा अपने घर आए, कहत के दिन थे, तो देखा कि इनका बच्चा तरबूज खा रहा है, तो उसके पीछे भागने शुरू हो गए, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन का बेटा तरबूज खा रहा है कहत के दिनों में, भाग रहे हैं उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए। तो बीवी कहती है कि ये तो इसने अपने पैसों से खरीदा है। फरमाया जब तक इस उम्मत के और बच्चे नहीं खाते, हमारे बच्चे नहीं खा सकते। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, ये हमारे बच्चे कैसे खा लें। हम कहते हैं आज हमारे बच्चे तो स्पेशल है, मैं तो वजीर आजम, मैं तो सदर मुमलिकत, मैं तो वजीर, मैं तो गवर्नर, मैं तो खाऊंगी, लोगों को महंगाई में चाहे कुछ भी ना मिल रहा हो, मैं तो एसी में बैठूंगी, मैं तो बड़ी गाड़ियों में जाऊंगी। फरमाते मैं कैसे खुद को एक राई समझ सकता हूं जब तक मुझे वो नहीं पहुंचता जो मेरी रैयत को पहुंचा है। यानी अगर उनको फाका पहुंच रहा है, अगर उनको कहत पहुंच रहा है, तो मैं कैसे अपने आप को एक राई समझ लूं कि अगर मैं खा लूं और वो नहीं खा रहे। फरमाते हैं तुम खुद को मोमिन समझते जबकि तुम में एक भूखा मोमिन मौजूद हो। अल्लाह अकबर, इतनी मुझे ये बात पढ़ के खौफ आया कि हम अपने आप को मोमिन समझते हैं, तो फरमाते हैं तुम खुद को मोमिन समझते हो जबकि तुम्हारे अंदर एक भूखा मोमिन है। आज कितने सारे मुसलमान भूखे पेट सो रहे हैं, हम अपने आप को मोमिन समझते हैं ना, हमसे ज्यादा मोमिन तो कोई है ही नहीं। अल्लाह अकबर। तो हालांकि ये वो जात है, वो शख्सियत है, जैसे मैंने आपको बताया कि जिनकी बात की ताईद कुरान ने की, उनकी बात कहने के बाद कुरान में वही बातें उतर आई, तो उसके बाद तो एक इंसान का दिमाग देखें, हमारे जैसे कोई लोगों दो लोग ही तारीफ करते हैं ना, तो हमारा दिमाग इतना चढ़ जाता है कि हम पता नहीं क्या बन गए। दो लोग हमारे आगे पीछे होने लगे तो हमें अकड़ आने लगती है, हम अपने आप को बड़ी चीज समझने लगते हैं। लेकिन इनका हाल ये था कि अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, जिस वक्त खलीफा बने थे ना, तो अल्लाह अकबर, उस वक्त मिंबर पे जब चढ़ने लगे ना, तो सुभान अल्लाह, मिंबर की तीन सीढ़ियां थी, तो सबसे ऊपर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते थे या खड़े होते थे तो खुतबा देने के लिए, तो उससे नीचे अबू बकर सिद्दीक रजील ना एक स्टेप नीचे खड़े होते थे। वो फरमाते हैं जब वो देखा तो फरमाते हैं कि मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं वहां खड़ा हूं जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, वो मुझसे बेहतर है, मैं इस लायक नहीं। दूसरी सीढ़ी को देखा, फरमाया मैं इस जगह खड़े होने के लायक कहाँ हूँ जहां अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला खड़े हुए, वो मुझसे बेहतर थे। लिहाजा फिर तीसरी सीढ़ी जहां पे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला जब बैठते थे तो अपने पैर रखते थे ना, उस पे खड़े हुए और तब दुआ की थी, अल्लाह मैं कमजोर हूँ, अल्लाह मुझे कवी कर दे, अल्लाह मैं सख्त हूँ तू मुझे नरम कर दे, अल्लाह मैं बखील हूँ तू मुझे सखी कर। अल्लाह अकबर, आजी की इंतहा देखें। देखें जब आजी जिस इंसान के अंदर होती है ना, अल्लाह ताला उसको बुलंद करता है, याद रखें अल्लाह उसको बुलंद करता है जिसमें आजी हो, और जो खुद अकड़ अकड़ के चलती है ना उसको अल्लाह ताला नीचा कर देता है, ये अल्लाह ताला का कानून है। तो अब जब मैंने आपको बताया था तनख्वाह भी कितनी थी इनकी, इनकी तनख्वाह भी ऐसी नहीं थी कि एक खलीफा है तो कितनी तनख्वाह होनी चाहिए, जबकि मैंने आपको बताया ना कि खुलफाए राशिदीन ये जो चारों खलीफा थे, इनके बाद जो आने वाले लोग थे वो ऐसा नहीं कि वो इस तरह से रहे थे, वो तो ऐशो आराम के अंदर रहे, वो बिल्कुल अपने आप को उन्होंने सही ठीक ठाक रखा था, मगर इनका हाल क्या था कि जैसे अगर खाकों पे आ गए ना, तब जाके फिर फरमाया था कि सहाबा कराम को, वो भी कि आप बताएं कि कितनी मेरी तनख्वाह होनी चाहिए बैतुल माल से, मुझे कितना लेना चाहिए, क्या मैं इस काबिल हूं कि मैं उससे लूं। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, आपको जाहिर है। हालांकि ये खुद है जो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जिस वक्त तिजारत के लिए कपड़ा लेके निकल रहे थे, तो इन्होंने जाके उनको कहा था कि अब आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि वरना खिलाफत की जिम्मेदारियां कौन संभालेगा, तो आपकी एक तनख्वाह होनी चाहिए। और खुद नहीं ली, खुद जिस वक्त खुद की बारी आई तो उस वक्त फिर फाकों पे नौबत आ गई, तब जाके उनको कहा कि मैं क्या ले सकता हूँ। तब उस वक्त उन्होंने कहा कि हाँ आप ले सकते हैं। और इनकी क्या तनख्वाह थी पता है आपको? खाना आपका और आपकी फैमिली का, लिबास एक जोड़ा गर्मियों का और एक जोड़ा सर्दियों का, एक सवारी जिसपे आप हज और उमरे के लिए जा सकते हैं, या जो आपने आपकी जो जिम्मेदारियां है ना खिलाफत की पूरी करनी हो तो वो फिर आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इससे ज्यादा सोचें, आज हमारे नौकरों की तनख्वाह होती है, इससे ज्यादा होती है, और इनके उन्होंने कहा यही मुझे मेरे लिए काफी है। और इसके अंदर आप सोचें क्या सेविंग होगी, क्या जोड़ते होंगे, क्या रखते होंगे, क्या करते होंगे, और क्या ऐश और आराम इसके अंदर हो सकते हैं। लेकिन चलो बड़े बड़े जो वजरा और सदर और ये होते हैं, इनके पर्क्स बहुत होते हैं, इनको इसके अलावा बड़ा कुछ मिल रहा होता है, तनख्वाह चाहे कम भी हो, ऐसी तो किसी की भी नहीं होती, लेकिन चाहे कम भी हो लेकिन उसके अलावा कितना कुछ होता है। और इनका हाल मैं आपको बता चुकी हूँ कि जिस वक्त हज पे तो खलीफा हर साल जाया करते थे ना, तो एक हज पे एक दफा जा रहे थे, तो अब्दुल्ला बिन आमिर कहते हैं कि पूरा रास्ता ना इनके पास कोई एहतमाम था, कोई सामान और कोई जगह उनके लिए खास मखसूस रखी गई हो कि जहां पे जाके इन्होंने ठहरना है, ना ही कोई खेमा साथ लिया हुआ था कि कहीं खेमा लगा ले और वहीं पे आराम कर ले। कहते हैं जिस वक्त आराम करने का वक्त आता ना, एक दरख्त के ऊपर कपड़ा डाल लेते थे, एक नीचे बिछा लेते थे और आराम कर लेते, ना कोई पहरेदार, कोई बॉडीगार्ड्स नहीं थे, ना कोई आलीशान सामान साथ था कि कहीं बैठेंगे कहीं उठेंगे, जाहिर खलीफा है तो ऐसे तो नहीं, कहाँ कहाँ तक मिस्र तक हुकूमत पहुंची हुई है, शाम तक हुकूमत पहुंची हुई है, उधर आजरबाईजान तक हुकूमत पहुंची हुई है, लेकिन क्या हालात है वहां। बाद वाले खलीफा जो थे वो तो अपनी अलग मजलिसें लगाते थे, उन तक किसी की एक्सेस नहीं होती थी, और इन तक जो चाहता था एक्सेस करता था, जो चाहता था खलीफा जो जाके मिल लेता था, मस्जिद में चला जाता था खलीफा के पास। अल्लाह अकबर, ऐसा नहीं था कि वो कहीं और हैं और लोग उनको मिल नहीं सकते, या उनका प्रोटोकॉल इतना है, या आप अपॉइंटमेंट लेकर आए, या उनके गार्ड्स हैं आगे पीछे वो उन तक नहीं पहुंचने देंगे, ऐसे था ये। तो बाद में आए बॉडीगार्ड्स भी, पहले पहरेदार भी, और ये आलीशान मजलिसें जो अलग से इनकी होती थी वो भी, ये बाद की पैदावार है, उस वक्त की नहीं थी। जबकि इनके दौर में, यानी आप इससे अंदाजा लगाइए किसरा के महल्लात के ताज, तलवारें, पटके, उनके जो जेवरात थे, वो जो हाथों में कंगन पहनते थे, कोई छोटी बात नहीं थी। इतना सामान था, इतना सामान था कि यानी मस्जिद नबवी में जमीन से ऊपर तक ढेर लग गया था, इतना सामान था। को क्या उनकी कीमती कालीने, क्या तो आपको पता है फारिस वॉज वर्ल्ड सुपर पावर, और यहां से कितना सामान आया होगा, और यानी मस्जिद नबवी में तो ढेर लग गए थे। ये वही लोग थे ना, कुछ साल पहले बिहाइंड जाके देखें आप, तो यहीं पे असहाबे सुफा का चबूतरा होता था, यहीं पे वो सहाबा कराम बैठते थे जो कि फाके करते थे, फाके, जिनके पास कुछ खाने को नहीं होता था। ठीक है, गुर्बत कितनी ज्यादा थी, आज ये हाल था कि जमीन से ऊपर तक चीजों का ढेर था, सोने चांदी के जेवरात, याकूत, चमकते मोती, कीमती लिबास, इस साजो सामान पे भी नजर पड़ी है ना, देखते ही रहे कुछ देर, फिर रोने लगे। और लोगों ने कहा अमीर उल मोमिनीन, अगर रोने का दिन तो नहीं आया तो शुक्र अदा करने का दिन है, खुशी का दिन। तो फरमाया अल्लाह तूने अपने रसूल को ये मालो मता नहीं दिया, हालांकि वो तो बहुत बेहतर थे। तूने अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत में उनको ऐसा माल नहीं दिया, हालांकि वो मुझसे बहुत ज्यादा इज्जत वाले थे, वो तेरे बड़े महबूब थे। अब तूने मेरी अहद में मुझे खिलाफत दी और ये मालो दौलत दे दिया, इसकी आजमाइश से मुझे बचाना। उनको ये आजमाइशें लगती थी। इतना रोए कि लोग इनकी हिचकियां बंधी हुई देख के तरस खाने लगे, मेरे पास इतना माल आ गया, मेरी आजमाइश ना बन जाए। कितनी फिक्र थी। हम खुश होते हैं ना माल ज्यादा है, हम खुश होते हैं हमारी तरक्की हो जाए, हम खुश होते हैं कि हमारे हमें बोनस मिल गया है, हम खुश होते हैं हमारी तनख्वाह बढ़ गई है, हम खुश होते हैं हमारी जहां पे हमने इन्वेस्टमेंट की थी वहां पे कोई प्रॉफिट बहुत बड़ा स्टॉक हमारा चढ़ गया, हम इसके ऊपर खुशियां मनाते हैं। और ये रो रहे हैं, कह रहे हैं वो मुझसे बेहतर थे, वो तेरे ज्यादा महबूब थे, अल्लाह उनको नहीं तूने दिया मुझे दे दिया, मेरी ये आजमाइश ना बन जाए कहीं, इसकी इसकी फितने से मुझे बचाना। अल्लाह अकबर। फिर फरमाया कि सारी चीज को बैतुल माल में जमा करा दो। नहीं, लोगों ने कहा कि आप जमा कराते हैं, तो फरमाया नहीं, जिस कौम में माल और दौलत ज्यादा हो जाता है उनमें बाहमी लड़ाइयां होती हैं, खाना जंगी होती है। और वाकई ये बात कितनी सही है कि जितना माल और दौलत दुनिया का ज्यादा बढ़ता है वहां पे, चाहे वो कोई खानदान ले लें चाहे कौमें ले लें, उनके अंदर उनके हालात क्या हो जाते हैं। फिर अब्दुर्रहमान बिन औफ को हुक्म दिया कि मैं तुम्हें कसम दे के कहता हूँ, शाम होने से पहले पहले इन तमाम चीजों को बेच के इनकी कीमत हाजतमंदों में तकसीम कर देना। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद वो जो सुराका बिन मालिक थे उनको बुलाया, तो आपने कहा सुराका खड़े हो जाओ, और किसरा के कंगन जो है उनको पहनाए। वो जब वो उनको पहनाए गए तो कंधों तक पहुंच गए। आपको पता है क्यों पहनाए थे? हाँ, अल्लाह अकबर। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई थी ना कि वो वक्त कैसा होगा सुराका, जिस वक्त सुराका हिजरत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के पीछे आया था, तो उस वक्त फरमाया था ना वो वक्त कैसा होगा सुराका के, तुम्हारे हाथों में किसरा के कंगन होंगे। और इन्होंने ये पेशीन गोई पूरी करानी थी ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था, तो ये पूरा हो के रहा सुभान अल्लाह। फिर इन्हीं का दौर था कि यहूदियों को एक्सपेल किया गया था जजीरा अरब से। आपको पता है यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में ही सारे के सारे मदीना से तो एक्सपेल कर दिए गए थे, खैबर की तरफ जाके बस गए थे। तो एक दफा जब वो खैबर में हजरत उमर की खिलाफत में अब्दुल्ला बिन उमर वहां पर अपने, इन जमीनें तो इनकी थी, वो वहां पे खेती बाड़ी किया करते थे जो यहूदी थे, तो ये अब्दुल्ला बिन उमर वहां पे देखभाल के लिए गए, तो उन पे रात की तारीकी में हमला किया गया और इनके हाथ पांव के जोड़ उखेड़ दिए गए। तो जब हजरत उमर को इसका पता चला तो फरमाया कि बेशक अल्लाह के रसूल ने खैबर के यहूदियों से मुआहिदा फरमाया था कि इनके माल महफूज रहेंगे, और फरमाया था हम तुम्हें इस वक्त तक बरकरार रखेंगे जब तक अल्लाह चाहेगा। तो हमारा एक आदमी अपने माल की खबरगिरी के लिए खैबर जाता है, तो रात के अंधेरे में उस पर हमला कर दिया जाता है, उसके हाथ पांव उखाड़ दिए जाते। यहूद के अलावा हमारा कोई दुश्मन नहीं, हमारा शक इन पे ही है, मैंने इन सबको जिला वतन करने का फैसला कर लिया। जब उन्होंने ये फैसला दे दिया तो बनु हकीक का एक यहूदी आया और कहने लगा अमीरुल मोमिनीन, क्या आप हमें हमारी सरजमीन से बेदखल करना चाहते हैं जहां पे हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकरार रखा, खैबर के अम्वाल पर हमसे सुलह फरमाई और शरायत आयद की। हजरत उमर ने फरमाया क्या तुम्हारा ये ख्याल है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भूल चुका हूँ, जिसमें आपने फरमाया था वो वक्त याद कर जब तुझे खैबर से निकाल दिया जाएगा और तेरी ऊँटनी तुझे देखकर कई रातें भागती रहेगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे ये फरमाया था। तो वो कहने लगा अमीरुल मोमिनीन ये तो अबुल कासिम ने सिर्फ एक मजाक किया था। आपने फरमाया, तो उमर ने फरमाया अल्लाह के दुश्मन तो झूठ बोलता है, फिर आपने इन सबको जिला वतन कर दिया था। तो इनके फल अम्वाल ऊंट सामान जो पालान वगैरह की शक्ल में था सबकी कीमतें अदा फरमा दी और कोई भी चीज बिला कीमत अपनी तहवील में नहीं ली। तो यानी ये बहुत बड़ा एक इंसिडेंट है कि इनके वक्त में यहूदियों को जजीरा अरब से निकाल दिया गया। आज तक ये भूले नहीं है इस चीज को कि हमें खैबर से निकाला गया, हमें यहां से निकाला गया था। ये आज तक इनको याद है और आज तक ये चाहते हैं कि ये वापस आ जाए। और एक और बहुत बड़ी चीज देखेंगे, जो इस्लामिक कैलेंडर है, हिजरी कैलेंडर जिसको हम कहते हैं, इसकी शुरुआत भी हजरत उमर के दौर से हुई। पहले मंथ्स तो होते थे, इस तरह रमजान, शवाल, जीका, ये सारे तो होते थे, दायरा उसके मुताबिक ही चलता था ना जो सारी इबादत थी। लेकिन हिजरी कैलेंडर नहीं था ये, जिससे साल या साल पहचाने जाते हैं ना कि कितने साल गुजर गए, ये वाला नहीं था। तो हुआ ये कि मैमून बिन मेहरान फरमाते कि एक दफा उमर के सामने एक मामला आया, मामला पेश किया गया जो शाबान में तय पाया था। तो सईदना उमर ने पूछा कि कौन सा शाबान, जो गुजर गया या आइंदा आने वाला है या जो इस वक्त गुजर रहा है। फिर उन्होंने सहाबा को जमा किया, फरमाया लोगों के लिए कोई अलामत तो मुकर्र करो कि सबको पता हो भाई, एक साल पहले का शाबान, इस साल का शाबान, 2 साल पहले का शाबान, इस वक्त के शाबान की बात हो रही है। तो एक सहाबी ने मशवरा किया दिया कि हम रूमियों की तरह कर लेते हैं। उनका ही तरीका, उन्होंने कहा कि सारी दुनिया में इस वक्त राय जाए, उस वक्त भी इसका मतलब राय होता होगा। लेकिन इस राय को ये कह के रद्द कर दिया गया कि वो बहुत उनकी जुल्करनैन से शुरू होती है तकवीम, तो हम वो नहीं करेंगे। एक और सहाबी ने मशवरा दिया कि क्यों ना हम अहले फारिस का तरीका इस्तेमाल करें, लेकिन ये सुपर पावर थी तो इन्होंने सोचा उनका ही तरीका शुरू कर देते। ये सुन के सबने कहा इन लोगों में हर आने वाला बादशाह पहले बादशाह का जो टाइम है उसको कैंसिल कर देता, अपना शुरू खुद ही कैलेंडर अपने दौर से शुरू करता है। तो सारी बहस के बाद ये फैसला किया गया कि देखा जाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में कितनी देर रहे। जब शुमार किया गया तो 10 साल बने। तो फिर ये कहा गया कि इसकी जो हिजरी कैलेंडर है, इसकी इब्तिदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के वक्त से की जाए। और हिजरत के वक्त में भी मुहर्रम से स्टार्ट किया जाए हिजरी ईयर, क्योंकि जिलहज में हज हो जाता है, इंसान पाक साफ हो जाता है, फिर हिजरी कैलेंडर वहां मुहर्रम से नया साल स्टार्ट किया जाए। ये भी बाज रिवायात में आता है कि चूंकि रबीउल अव्वल के अंदर हिजरत हुई थी, लेकिन उसकी प्लानिंग जो थी वो मुहर्रम से ही हो गई थी, लिहाजा मुहर्रम को ही बनाया जाए ऐसा कि उससे साल को शुरू किया जाए। फिर अपना मुहासबा सबसे ज्यादा खुद करते थे, इसी को नहीं कहने की जरूरत थी कि कोई पॉइंट आउट करे, सबसे ज्यादा खुद अपने ऊपर दारोगा थे, अपने ऊपर सबसे ज्यादा खुद सख्ती करने वाले थे, यानी अपना ध्यान सबसे ज्यादा खुद रखते थे। जैसे हम आजकल, माजरत के साथ, हम आजकल दूसरों का ध्यान जैसे रखते हैं ना कि वो क्या कर रहा है और वो किधर गलत है और उसने ये चीज गलत की और उसने वो काम गलत किया और उसने ऐसा गलत किया, तो वो चीजों को नहीं, वो अपने ऊपर उनको ज्यादा नजर होती थी। जिस जब भी अपनी खिलाफत उन्होंने संभाली थी तो अपना मुहासबा उनका सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट अपने लिए होता था। एक दफा किसी काम में मसरूफ थे, एक आदमी आया, कहने लगा अमीरुल मोमिनीन मेरे साथ चलें और मेरी मदद करें, फलां आदमी ने मेरे पर ज्यादती की। तो हजरत उमर उस वक्त उमूरे मुमलिकत में किसी बहुत ही अहम काम में मसरूफ थे, तो उसको सरजनश करते हुए फरमाया जब उमर तुम्हारे लिए वक्त निकालता उस वक्त तुम आते नहीं हो, और जब वो दूसरे जरूरी कामों में मसरूफ हो जाता तो तुम आ जाते हो। जैसे इंसान को कभी गुस्सा आता है ना कि भाई जब मैं तुम्हारे लिए टाइम निकालूं तब तुम होते नहीं हो, जिस वक्त मैं कोई और काम करने लगूं तो तुम आ जाते हो। तो वो आदमी चुप करके चला गया। थोड़ी देर बाद खुद को एहसास हुआ कि मैंने ये क्या किया, मैं मुझे चाहिए था कि मैं इसकी जो जो भी इसका काम था वो देखता, इसकी दादरसी करता। ये ख्याल आते ही हुक्म दिया कि इस आदमी को वापस बुलाया जाए। जब वो वापस आया तो आपने अपना दुर्रा उसकी तरफ फेंक दिया और कहा कि तुम्हारी बर वक्त दादरसी ना करके मैंने तुम पे ज्यादती की है, तुम मुझसे ज्यादती का बदला ले सकते हो। तो वो बोला अमीरुल मोमिनीन मैं कैसे ये कर सकता हूँ, मैं अल्लाह की और आपकी रजा की खातिर आपको माफ करता हूँ। तो फरमाने लगे, नहीं इस तरह ना करो, या तो सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर मुझे माफ कर दो या मुझसे किसास ले लो। तो वो समझ गया, कहने लगा मैं अल्लाह की रजा की खातिर आपको सिर्फ माफ कर देता हूँ। तो उस वक्त आपके साथ कुछ लोग थे, उनमें अहनफ बिन कैस भी थे। वो फरमाते हैं कि फिर सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला उन्होंने नफल नमाज पढ़ना शुरू की, 2 रकतें अदा की, तो अपने आप से मुखातिब होके कहने लगे, ऐ इब्ने खत्ताब, तू कितना गिरा पड़ा आदमी था, अल्लाह ने तुझे बुलंदी दी, तू गुमराह था, अल्लाह ने तुझे हिदायत दी, तू जलील था, अल्लाह ने तुझे इज्जत दी, तुझे लोगों का हाकिम बनाया, तेरे पास एक आदमी जुल्म के लिए मदद का तलबगार होके आया, तू उसकी दादरसी करने की बजाय उसकी सरजनश करता है। कल जब तू अपने रब के हजूर पेश होगा तो तू क्या जवाब देगा? अपने आप को डांटते रहे, अपने आप को मलामत करते रहे। और कहते हैं कि आनफ कहते हैं, मैंने देख रहा था, हत्ता कि मेरे दिल में ख्याल आया कि जैसे ये सारी कायनात के सबसे अच्छे इंसान है। कहते कि इतना ज्यादा इस चीज का एहसास होना, इतना ज्यादा अपने आप के ऊपर सख्ती करना, इतना ज्यादा खुद को यानी मुहासबे के लिए अपने आप के ऊपर पहले अपने आप को पेश करना हर मुहासबे के लिए, और खुद एहसास हो जाना, खुद एहसास होना, ये कितनी बड़ी बात है ना। और असल में हम हमें अगर कोई बताए तो तमाम गुस्सा करते हैं, और अगर अपना अंदर खुद ख्याल आ जाए तो तब भी अपनी गलती मानने से हम कतराते हैं, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता अगर किसी को पता चल गया कि मैं गलत हूं तो मेरा तो रो भी जाता रहेगा। उनके अंदर ये चीज नहीं थी कि मेरा रोग जाता रहेगा, मैं कैसे फिर लोगों में बड़ा बनूंगा। अल्लाह अकबर। इसीलिए देखिए ना, अपने जब खुद फरमाते हैं कि अपना मुहासबा करो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए। अल्लाह अकबर। तो फिर आप खुद सोच लें कि सबसे पहले ये चीज अपने अमल में लेकर आने वाले थे कि अपना मुहासबा करते थे, अपने आप को मलामतें करते थे, खुद रोते थे, खुद अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ाते थे, माफियां मांगते थे। अल्लाह हू अकबर। इसी तरह इनके बारे में आता है कि एक दफा एक जगह से जा रहे थे, वहां पे कूड़ा करकट पड़ा हुआ था, इतनी स्मेल आ रही थी, तो वहां रुक गए। उनके साथ चलने वाले इतनी अजियत महसूस करने लगे कि हाय इतनी स्मेल है। तो फरमाया, ये है वो तुम्हारी दुनिया जिसके पीछे तुम भागते हो और जिसके ना मिलने पे तुम रोते हो, ये है वो तुम्हारी दुनिया। अल्लाह हू अकबर। इनके नजदीक ये थी दुनिया। अल्लाह हू अकबर। और अपने आप को फरमाते थे, जिस वक्त कहत कई दिन थे उस वक्त, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोग कुछ जिबा करके ला रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, कोई तोहफे में इनको कुछ दे रहे हैं कि ये भी कुछ खा लें, ये भी अपने ऊपर इतनी मुशक्कत ना करें। तो जब इनके सामने गोश्त ला के रखा गया तो कहते हैं, ये टुकड़े गोश्त के कहाँ से आए? अच्छा वाला गोश्त ना इनके सामने रखा गया। लोगों ने अर्ज किया, मेरी मोमिनी, ये उन ऊँटों से लिया गया है जो आज हमने जिबा किया। तो आप बड़े हैरान हुए, फरमाया, अगर मैं ये उमदा और लजीज गोश्त खा लूं जबकि आम लोग इससे कम तर गोश्त खा रहे हैं तो मैं कितना बुरा हुक्मरान हूंगा। ये फरमाया, फरमाया बर्तन उठा लो, मेरे लिए कोई और सादा खाना लो। तो आपकी खिदमत में रोटी और तेल रख दिया गया, तो हाथ से रोटी के टुकड़े तेल में भिगो भिगो के खाने लगे। इनको किसी चीज की क्या कमी थी कोई? अल्लाह हू अकबर। और मैंने आपको शहद का तो वाकया बताया ही था कि जिस वक्त शहद पीने का हकीमों ने कहा था, तो उस वक्त भी लोगों से इजाजत लेने के लिए चल पड़े के लोगों, आप मुझे इजाजत देते हो तो मैं ये खाऊंगा वरना मैं नहीं खाऊंगा। तो वहां अल्लाह, एक दफा दूध लाके इनके खादिम ने इनको दिया, तो जिस ऊंटनी का दूध पिया करते थे वो नहीं था, कोई और दूध था। इनको पता चल गया, कहने लगे, ये दूध कहाँ से लाए? खादिम ने कहा, मेरे मोमिनिन, ऊंटनी का बच्चा अचानक खुल गया था, उसने सारा दूध पी लिया जो आपकी ऊंटनी थी, तो मैंने बैतुल माल की एक ऊंटनी का दूध लाके आपको दिया। तो कहते हैं, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, तुमने क्या किया? मैं इसको अपने लिए जायज नहीं समझता। हालांकि उनके लिए तो ठीक था, किसी का खलीफा, उन्होंने तो बैतुल माल से ही लेना है। और फिर सहाबा को बुला लिया, उनके सामने मामला रखा कि अब क्या होगा, अब ये तो मैंने ये पी लिया यहां से। तो सबने फतवा दिया कि आपके लिए इस ऊंटनी का दूध पीना हलाल है, इसका गोश्त खाना भी हलाल है, लेकिन खुद को नहीं इस तरह करते थे। और देखिए ना, इनके मैंने आपको जैसा बताया था कि राया भी ऐसी थी ना, कि वो खड़े होके उन्होंने कहा था या यो नास इस्माओ वो आती हो सुनो और इताहत करो, तो वो आदमी ने कहा हम क्या, हम नहीं सुनेंगे और इताहत करेंगे। तो पूछे, नरमी से पूछ रहे हैं क्यों अल्लाह के बंदे, ये नहीं कहते कि तुम्हारी क्या मिजाज। उसने आगे से कहा भैया आपने हमें मालिक हमें नीमत में से एक एक चादर दिया, खुद आपने जो कमीज बनाई हुई तो एक चादर में बन ही नहीं सकती, तो ये आपने फिर कहां से ले ली, खुद आपने दो ली है फिर। तो फिर अपने बेटे को बुलाया था कि आके बताओ, तो उन्होंने आके बताया अब्दुल्ला बिन उमर ने कि मैंने अपने बाप को दी है एक्स्ट्रा, यानी मेरी जो अपने थी वो मैंने इनको दी है। अल्लाहु अकबर। इस तरह एक दफा हजरत अब्बास जो थे उनका मदीना में घर था, तो इनके घर का एक परनाला सा था, तो एक दिन उन्होंने कुछ जिबा किया तो उस परनाले से खून बह गया, पानी बहाया ना तो वो उससे खून और ये सब चीज उस परनाले से बह रहा, तो वहां से गुजर रहे थे तो वो पानी इनके ऊपर गिर गया, छींटे गिर गए, तो बड़ा इनको गुस्सा आया। नमाज के लिए जा रहे थे तो इन्होंने हुक्म दिया इस प्रणाली को उखाड़ दिया जाए, तो हुक्म की तामील की गई, वापस आए घर से दूसरे कपड़े पहने, मस्जिद आए, लोगों को नमाज पढ़ाई। थोड़ी देर बाद अब्बास आ गए, फरमाया अल्लाह की कसम ये वो जगह थी जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथ मुबारक से इस प्रणाली को नसब फरमाया था। ये सुन के तो फरमाया अब्बास मैं आपको अल्लाह की कसम देता हूँ आप भी मेरी पुश्त पे सवार होके दोबारा इसी जगह इसको नसब करें जहां अल्लाह के रसूल ने से नसब की। नहीं कोई जरा सी भी आप नहीं देखते कि एरोगेंस, जरा सा भी अपनी रोब अपनी खिलाफत का, जितना हम सोचते हैं ना कि ये सख्त थे उतना ही ज्यादा, देखिए जो उन्होंने दुआ की थी वाकई अल्लाह ने इनको कैसा नरम कर दिया। अब्बास ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन इन्होंने इसरार किया कि नहीं आप ऐसा ही करें, आखिरकार उनको हथियार डालने पड़े, फिर उन्होंने ऐसा ही किया। अभी हालांकि आप देखिए मशरिक से मगरिब तक इनकी हुकूमत है, इतनी वसी हुकूमत है, लेकिन जिम्मेदारी का एहसास इतना है, हर आन अपनी राया की खबरगीरी के लिए परेशान रहते, सादगी इतनी थी कि जमीन पे बैठ जाते, मामूली चादर नीचे बिछी होती, इनका कोई देखता था तो ऐसे ही लगता था कोई राया का मामूली सा आदमी बैठा। आप देखिए जब हज पे जा रहे थे तो रास्ते में इन्होंने कोई 80 दिरहम खर्च कर, उसके बाद इतना पछता रहे हैं कि ये मैंने इसराफ कर दिया, ये मैंने इसराफ कर दिया। अल्लाहु अकबर। हम सोचते हैं कि जब हम निकले हैं तो अब तो खर्च करके ही आएंगे, फिर अपने हाथ को ना बाज दफा जलती हुई आग होती थी ना उसके करीब ले जाते थे, फिर अपने आप से कहते थे ए खताब के बेटे क्या तू इस आग के ऊपर सबर कर सकता है, क्या तू इस आग पे सबर कर सकते, नहीं अपने आप को एड्रेस करते थे, मैं आपको सबसे पहले कहते थे। अल्लाह अकबर। हमेशा कहा करते थे कि तुम किसी की नमाज रोजा देख के उसको नेक ना समझो, उसको पारसा ना समझो, बल्कि ये देखो कि बात करता है तो सच बोलता है, जब उसको अमानतदार बनाया जाता है तो अमानत का ख्याल रखता है, गुनाह को तकवा और परहेजगारी की वजह से छोड़ता है कि नहीं। फरमाते थे तुम में बेहतर हुआ है जो आखरत के लिए अमल करे, दुनिया को छोड़ दे या दुनिया के लिए मेहनत करे और आखरत को भुला दे, बेहतर वो नहीं है, सॉरी तुम में से बेहतर वो नहीं है जो आखरत के लिए अमल करे और दुनिया को छोड़ दे, या दुनिया के लिए मेहनत करे और आखरत को भुला दे, बल्कि तुम्हें सबसे अच्छा वो है जो दुनिया से भी फायदा उठाए और आखरत के लिए भी तकोदो कर। फिर फरमाते थे दुनिया में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी नुकसानदेह है, यानी बैलेंस लाइफ की तरफ, लोगों को बैलेंस लाइफ की तरफ बुलाते थे कि ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल एक तरफ को चले जाओ, ऐसा ना हो। इसीलिए उन्होंने अपने जो गवर्नर थे अपने हुकूमत के जो अमाल थे उनके बड़े बड़े अच्छे वजीफे रखे हुए थे, कहीं ये ना हो कि वो फिसल जाए, कहीं रिश्वतें लेने लगे, कहीं ऐसे कोई काम करने लगे जो हराम हो। ऐसा नहीं था कि उनको भी बिल्कुल फाकों पे रखा हुआ था। अब्दुल्ला बिन मसूद के लिए 100 दिरहम थे, एक चौथाई बकरी थी, जैसे अम्मार बिन यासिर जब कूफा के वाली बनाए गए तो उनके लिए और उनके मुआविनीन में से हर एक के लिए 600 दिरहम महाना मुकर्रर किया हुआ था। तो बताने का मकसद ये है कि उनको अच्छी तनख्वाहें भी देते थे, उनको अच्छा रखा हुआ था, सिर्फ अपने ऊपर सबसे ज्यादा सख्ती थी। और आज ये हाल है कि अपने ऊपर ही हम सबसे ज्यादा नरमी करते हैं, दूसरों पे सख्ती करते हैं। एक दफा अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं, मैंने एक ऊंट खरीदा तो मैं भी आम लोगों की तरह बड़ी चरागाह में इसे को उसको चराता रहा। जब ऊंट मोटा ताजा हो गया तो मैं उसे बाजार में फरोख्त करने के लिए ले आया। इत्तेफाक था कि हजरत उमर भी उसी रोज बाजार में दाखिल हुए। मोटे ताजे ऊंट को देख के पूछा, ये किसका ऊंट है? जवाब मिला, आपके बेटे का, अब्दुल्ला का। तो ताज्जुब किया, फरमाया, अच्छा अमीरुल मोमिनीन के बेटे अब्दुल्ला का। फिर कहते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के मुझसे पूछने लगे, ये ऊंट कहाँ से आया? मैंने अर्ज किया, मैंने इसे खरीदा, फिर ये जो अवामी चरागाह है उसमें चरता रहा। आम लोगों की तरह मेरा भी इरादा कि था कि इससे नफा हासिल करूं। तो तुमर ने फरमाया, फिर लोगों ने तेरी रायत करते हुए कहा होगा कि अमीरुल मोमिनीन के बेटे के ऊंट को चरने दो, इसको पानी पिलाओ, तो वो उन्होंने बड़ी खिदमत की होगी इसकी। फिर बेटे से मुखातिब होकर फरमाया, अब्दुल्ला इसे बेचकर जो असल तुम्हारी कीमत थी वो अपने पास रख लो, लेकिन बाकी बैतुल माल में जमा कर। उनके ये गुराबा मसाकीन इनके माल में से है जहां पे ये ऊंट चरता रहा। अल्लाह अकबर। जब लोग किसी काम से मना करते थे ना, अपने घर वालों को सबसे पहले मना करते, अपने घर वालों के ऊपर सबसे ज्यादा सख्ती करते। जब एक दफा इनके बेटे के साथ मिलने के लिए आए तो ये किसी काम में मसरूफ थे, तो इन्होंने मसरूफ रहे, इन्होंने दरवाजा नहीं खोला। तो हजरत हुसैन भी आए और उन्होंने जब देखा कि बेटे को नहीं अंदर जाने की इजाजत मिली तो फिर मैं क्या जाऊंगा, तो वापस आने लगे। तो बाद में हजरत उमर पूछे और उनके से मिले तो पूछा कि आप आए नहीं, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला से। तो वो फरमाने लगे कि आपके बेटे को अंदर आने की इजाजत नहीं मिल रही थी, आप शायद मसरूफ थे, लिहाजा मैं भी नहीं आया। फरमाया, नहीं, तुम्हारा मामला अलग है, तुम्हारा मामला अलग है। इतनी अल्लाह के नबी के अहले बैत का इतना इकराम करते थे। और अपना तो ये हाल था कि एक दफा सैयदना अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मैं इनके साथ था, तो मैं वो एक बाग में चले गए और मैं बाहर था, तो मेरे और उनके दरमियान दीवार थी, तो मैं ना दीवार के साथ लग के सुन रहा था। अंदर से आवाज आ रही थी, खत्ताब के बेटे अल्लाह से जरूर डरते रहना वरना अल्लाह तुझे जरूर अजाब में मुब्तला करेगा। अल्लाहु अकबर, अपने आप को ये कहते हैं। अल्लाह अकबर, अरे अपने ऊपर सख्ती, लेकिन अपनी अवाम के लिए कितना अच्छा चाहते थे, और अपनी अवाम को और अजवाजे मुतहरात का तो खास तौर पे बहुत ख्याल रखते थे। उनके हिस्से मुकर्रर कर दिए हुए थे, उनको सबसे ज्यादा देते थे, हज पे उनके लिए उनको साथ लेकर जाते थे, जहां खुद ठहरते थे वहां उनको ठहराते थे, अजवाजे मुतहरात का इतना ज्यादा इकराम करते थे। एक दफा इराक से एक वफद आया, उसमें अहनफ बिन कैस भी शामिल थे। शदीद गर्मी का मौसम था तो जब उमर चादर सर पे लपेटे हुए सदके के ऊंट को ना तेल मल रहे थे, तो फरमाया, आना तुम भी कपड़े बदल के आ जाओ और मेरी मदद करो, ये सदके के ऊंट है जिसमें यतीम मिस्कीन बेवा का हक है। एक आदमी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह आपकी बख्शिश फरमाए, आप किसी गुलाम को हुक्म दे दे कि वो ये काम कर दे। फरमाया, मुझसे और अहनफ से बड़ा गुलाम और कौन हो सकता है? जो शख्स किसी राया का वाली बने, इसकी हैसियत अवाम के सामने ऐसी है जैसे खैरख्वाही और अमानतदारी के सिलसिले में एक गुलाम की आका के सामने हो। ये मैंने आपको जो शुरू में बात बताई कि अपने आप को ऐसे करते थे कि मैं इनका नौकर हूं, अपने अवाम का, अपनी राया का। तो अपने आप को ये नहीं समझते थे कि मैं बड़ी चीज हूं। अल्लाह अकबर। एक दिन हजरत उरवा बिन जुबैर और जो हजरत असमा के बेटे हैं ना, हजरत उरवा बिन जुबैर, एक दिन किसी काम से निकले तो देखा कि अमीरुल मोमिनीन जो है वो अपने कंधे पे पानी का मशीसा उठाए हैं। दिल में ख्याल आया, अमीरुल मोमिनीन और पानी का मशीसा। आगे बढ़ के अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन ये काम आपकी शख्सियत के शायाने शान नहीं है। उन्होंने उरवा की तरफ देखा, फरमाया असल में मेरे पास बाहर से कुछ लोग आए थे, उन्होंने मेरे सामने अपनी इताअत और फरमाबरदारी का इजहार किया। मेरे दिल में कुछ फखर सा आ गया कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, लोग मेरी इताअत करते हैं। फिर मैंने अपने आप को दुरुस्त करने के लिए कंधे पे पानी का मशीजा रख दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर के अपने आप को मैं सीधा करूं। अगर उनके दिल में आ सकता है तो कभी हमारे दिल में नहीं आ सकता। आप सोचते हैं हम बहुत इतने पारसा हैं, हमारे दिल में तो कभी कोई फखर की बात आ ही नहीं सकती। नहीं, हमारे दिल में भी ऐसी बातें आ सकती हैं और आती हैं। और उस वक्त हमें क्या करना चाहिए कि हम अपने आप को खुद अदब सिखाएं, क्योंकि बाहर वाले नहीं जानते कि हमारे दिल में क्या आया, हम खुद जानते हैं। हमें पता है कि हमारे दिल के अंदर कोई ऐसी बात आई है, तो अब हमने अपने आप को फिक्स करना है। उस वक्त कहीं जूतियां उठाएं, उस वक्त कहीं वैक्यूम करें जाके, उस वक्त किसी के मदद करें, उस वक्त अपने से ऐसे काम जो आप करने में अपनी शान के खिलाफ समझते हैं ना, वो करें। और अपने आप को नीचे लेकर आए और खुद से कहें कि मैं कुछ नहीं। मुआज़े जंग से मुजाहिदीन की डाक आती थी, इनके जमाने में ये भी शुरू हो गया डाक का निजाम, तो इसको बहुत तवज्जो देते थे। मुजाहिदीन के लिखे हुए खतूत को खुद उनके घरों तक पहुंचाते, उनके घर वालों से फरमाते थे तुम्हारे खाविंद अल्लाह के रास्ते में है और तुम अल्लाह के रसूल के शहर में हो, अगर तुम खुद ये खत पढ़ सकती हो तो ठीक है, वगरना दरवाजे के करीब खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हें ये खत पढ़ के सुनाता हूँ। आपको पता है ना कि ये पढ़े लिखे थे। फिर इनसे फरमाते थे महाज से आने वाला डाकिया फलां दिन वापस चला जाएगा, तुम इन खतूत के जवाब लिख दो ताकि तुम्हारे खामिंदों तक पहुंचा दिए जाए। फिर सैयदना उमर कागज और दवात का इंतजाम अपने साथ रखते, जो खवातीन लिखना नहीं जानती थी उनसे फरमाते ये कागज और दवात मौजूद है, तुम दरवाजे के करीब हो जाओ और लिखवाओ, मैं अभी तुम्हारे खतूत लिख देता हूँ। इस तरह अपने अहद का ये सबसे बड़ा फरमा इन तमाम घरों से खतूत हासिल करके उनके शोहरों के पास महाज जंग पे इरसाल कर दे। कैन यू इमेजिन, ये डाकिये का काम करना। अल्लाह अकबर। इनकी जो जो मुजाहिदीन गए होते थे उनके घरों में उनके घर वाली होती थी तो उनका इतना ख्याल रखते थे कि मतलब ऐसे समझ लें कि उनके खाविंद नहीं है, तो ये अपना अपनी जिम्मेदारी समझते थे कि मैं राया का सरपरस्त हूं, तो मैंने इनके घरों की देखभाल करनी है। अहले खाना से पूछते थे क्या तुम्हारी कोई जरूरत है, या तुम में से कुछ कोई कुछ खरीदना चाहती है। अब किसी के हस्बैंड गए हो, हम तो पूछते भी नहीं है कि भाई आपको कोई जरूरत है। फरमाते थे मुझे डर है कहीं खरीदो फरोख्त में तुम धोखे का शिकार ना हो जाओ, क्योंकि वो औरतें थी ना, उनको इतना क्या समझ है कि तुम्हें कोई धोखा ना दे दे, कि औरतें इनको तो पता ही नहीं है बाहर के रेट क्या है क्या है, तो कुछ और ही तुमसे चार्ज कर ले। तो फिर कहते थे वो औरतें ना अपनी लौंडियां साथ कर देती थी, तो जब तुम्हारे बाजार तशरीफ ले जाते थे उनके पीछे बहुत से गुलाम और लौंडियां चल रहे थे, वो ये सारे मुजाहिदीन के गुलाम और लौंडियां होते थे, वो सबके लिए उनकी जरूरत का सामान खरीद देते, अगर किसी के पास पैसे नहीं होते अपनी जेब से उसके लिए खरीदारी कर लेते। अल्लाह अकबर। कि आप खुद सोचिए कि वाकई जैसे एक बाप होता है अपनी औलाद के लिए, उस तरह से करते थे। अल्लाह अकबर। और ये नहीं है कि औरतों के साथ कुछ कम सलूक करना या ऐसे उनको कुछ नहीं समझना, जैसे हम सोचते हैं कि शायद इस्लाम के अंदर, मैंने आपको हजरत कौला बिनते सालिबा का वाक्या सुनाया था कि जिस वक्त ये जा रहे थे तो फिर रास्ते में वो मिली थी, तो इन्होंने उनको सलाम किया था, तो उन्होंने कहा था तुम मैं तुम्हें उस वक्त से जानती हूँ, तुम उकास की मंडी में उमेर के नाम से पुकारे जाते थे, तुम अपनी लाठी से बच्चों को डराते थे परेशान करते थे, फिर तुम्हें लोग उमर कहने लगे। आज ये है कि तुम अमीरुल मोमिनीन बन गए, अपनी राया के बारे में अल्लाह से डरते ना ना। जान लो जो वईद से डर गया, दूर होने वाली चीज भी उसके करीब हो जाएगी, और जो मौत से डरता है वो दुनिया के हाथ से जाने पर गमजदा रहेगा। नहीं, वो तो जब कोई नसीहत करता था ना, उसकी बात को गौर से तो सुनते। हालांकि साथ वाले कहने लगे, अब बस कर माँ, अम्मा बस कर दे, अमीरुल मोमिनीन को कितनी तुम बातें सुनाओगे। हाँ, तो नहीं, इसको ना रोका, ये तो वो है जिसकी अल्लाह ने सात आसमानों पे सुन ली थी, उमर क्यों ना सुने इसकी बात। अल्लाह अकबर। तो फरमाते थे अपनी दुनिया की तरफ तुम मायल ना होना। इस चीज की बहुत फिक्र रहती थी कि लोग कहीं ये ना हो कि इसी दुनिया में गुम हो के और आखरत को भूल जाए। तो फरमाते थे, अल्लाह ताला मुझे इस हाल में ना देखे कि मैं अपने आप को अबू बकर सिद्दीक के बराबर समझू, इसके बाद अपने आप को किसी यानी मैं उनसे बढ़ के अपने आप को समझू, मैं उनसे ज्यादा अपने आप को इज्जत वाला समझू, क्योंकि इनके पास बहुत कुछ ज्यादा साजो सामान आ चुका। और फिर फरमाते थे, कुरान की तिलावत कसरत से किया करो, इसके जरिए तुम्हें दुनिया में इज्जत मिलेगी। इस कुरान की तिलावत किया करो, तुम्हें अहले कुरान में शामिल किया जाएगा, इससे पहले कि तुम्हारे आमाल का वजन किया जाए, तुम खुद अपने आमाल का वजन कर लो, उस दिन की तैयारी कर लो। अल्लाह के सामने जिस दिन तुम्हें पेश हो जाना, उस दिन कोई चीज तुम्हारी अल्लाह से छुपी नहीं रहेगी। किसी को हक देते हुए अल्लाह की नाफरमानी से बचना। तो फिर ये भी लोगों को कहते थे कि एक आदमी था, वो किसी की गवाही देने के लिए खड़ा हुआ, तो उससे पूछा कि तुम इसको जानते हो? तो उसने कहा हाँ। फरमाया, क्या तुम इसके पड़ोस में रहते हो? उसने कहा नहीं, पड़ोस में तो नहीं रहते। फरमाया, क्या तुम्हें कभी एक दिन इसके साथ रहने का मौका मिला कि तुम्हें इसकी हकीकत पता चले? उसने कहा नहीं। फरमाया, क्या तुमने इसके साथ कभी सफर किया है? वो सफर से भी इंसान को पता चल जाता ना कोई कैसा है। उसने कहा नहीं। तो फिर फरमाया, शायद तुम इसे मस्जिद में नमाज पढ़ते देख रहे हो और सोचते हो कि तुम इसको जानते हो? उसने कहा जी हाँ। तो फरमाया, तुम इसको नहीं जानते। वाह, इतनी हिकमत है ना इन बातों में, कि आप किसी को मस्जिद आता जाता देख के समझ लेते हैं, बहुत अच्छा, बड़ा नेक, बड़ा ऐसा, हालांकि आपको नहीं पता कि किसी की हकीकत क्या है। जब तक आप उसके साथ सफर ना कर लें, जब तक आप उसके साथ एक दिन ना गुजार लें, जब तक आप उसकी हमसाईगी में ना रहते हो, आपको पता ही नहीं है कि वो इंसान कैसा है, असल में क्या है उसकी हकीकत। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। इसी तरह आखरत के बारे में इतने ज्यादा खुद भी फिक्रमंद रहते थे, सिर्फ लोगों को नसीहतें नहीं करते थे, हर नमाज के बाद कुछ देर लोगों के पास बैठते थे, किसी जरूरत होती थी उस पर गौर करते थे, किसी को कोई काम होता था उसको उसका काम पूरा करते थे। और हमें ये भी पता चलता है कि औरतों को उनके खामिंद चूज करने में भी उनको ये हक देते थे कि फरमाते थे कि औरत का भी हक है कि वो ऐसा खामिंद चूज करे जो उसको पसंद हो। वालदैन को इस बात से मना करते थे कि वो अपनी बच्चियों को ऐसे लोगों के साथ निकाह पे मजबूर करें जहां पे वो नहीं करना चाहते। और फरमाते थे आदमियों को कि जिस तरह तुम खूबसूरत बीवी के ख्वाहिशमंद होते हैं, इसी तरह बच्चियां भी पसंद करती हैं को उनका शरीके हयात खूबसूरत हो। एक औरत अपने खामिन की शिकायत लेकर आई कि वो मतलब उसे खुला लेना चाहती थी, तो देखा तो उसका खामिन बिखरे हुए बाल हैं और बुरे हालत में है, तो हुक्म दिया कि इसके शोहर को हमाम में नहलाओ, इसके नाखून तरशवाओ और बाल भी कटवाओ। जब वो नई सूरत में आ गया तो बीवी ने जब देखा तो वो अपने मुतालबे से दस्तबरदार हो गई। तो तो उन्होंने फरमाया फिर हजरत उमर ने कि इन बीवियों के लिए इसी तरह बन ठन के रहा करो, अल्लाह की कसम ये भी चाहती हैं कि तुम इनके लिए खूबसूरत बन के रहो जिस तरह तुम चाहते हो कि ये तुम्हारे लिए जेब व जीनत इख्तियार करें। अब आप शायद सोचते होंगे कि हजरत उमर क्या कभी ऐसा कह सकते हैं, तो जी हाँ, देखें आपके उनकी आप इन बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना हर एक की उसका ख्याल रखना कि किसको क्या चीज पसंद होगी, और खुद की तवाजो इनकसारी इतनी ज्यादा थी कि बेमिसाल है। पूरी उम्मत में इनके जैसा आजिज मिजाज आपको कोई नहीं नजर आएगा, लेकिन इनकी ये इनकसारी सिर्फ शो ऑफ के लिए नहीं थी कि लोग मुझे देख के ऐसा कहें, बस अल्लाह की खुशनूदी हासिल करने के लिए। लेकिन हाँ, किसी के ऊपर जुल्म को कभी नहीं बर्दाश्त करते थे। तो इस तरह ही हमें एक दफा पता चलता है कि एक दफा हजरत उमर सख्त तरीन गर्म दिन था तो अपने सर पर चादर रखे में एक गुलाम गधे पे सवार वहां से गुजरा, तो हजरत उमर ने कहा मुझे भी अपने साथ गधे पे सवार कर लो। गुलाम गधे से छलांग लगा के नीचे उतर आया, उसने कहा अमीरुल मोमिनीन आप सवार हो जाए, मैं तो आपके साथ चलूंगा। तो नहीं, फरमाया कि नहीं मैं अकेला सवार नहीं हूँ। खुद पीछे बैठ गए और वो आगे बैठ गया और लोग हैरान हुए कि ये अमीरुल मोमिनीन जा रहे हैं। अल्लाह हु अकबर। इसी तरह राया की अपनी खबर गिरी जो रखते थे ना, उसकी वजह से भी इन्होंने कई अमेंडमेंट्स की। मसलन एक अमेंडमेंट ये की कि एक दफा रात को गश्त कर रहे थे तो अपना दुर्रा हाथ में पकड़ के चल रहे थे, जो चीज कोई नागवार देखते थे ना खुद ही उसको फिर रोकने की कोशिश करते थे। तो एक दफा एक गश्त के दौरान एक घर के पास से गुजरे तो एक खातून को सुना वो कुछ शेर पढ़ रही है, जैसे किसी की जुदाई में ऐसे शेर पढ़ रही है जो कि मतलब कोई अपने हस्बैंड के लिए ही पढ़े तो अप्रोप्रिएट है। तो इनको बहुत गुस्सा आया, तो इन्होंने वो औरत ने एक शेर पढ़े, फिर उसने ठंडी आ भरी और कहा अमीरुल मोमिनीन मुझ पर ये कैसा जुल्म है कि ये लंबी रातें काट खाने को आती हैं। तो यानी मैं अपने शोहर की जुदाई में ये बात सुनते ही जब सुनी ना तो दरवाजे पे दस्तक दी और वो खातून खौफजदा हो गई, उसने दरवाजा नहीं खोला। इन्होंने बार बार खटखटाया और इसरार किया कि नहीं दरवाजा खोलो, मैं अमीरुल मोमिनीन हूं। जब गुस्से से बोले तो फिर उसने जल्दी से दरवाजा खोला, फिर पूछा कि ये तुम किसके लिए पढ़ रही हो, तो उसने कहा कि मैं अपने खामिंद की जुदाई में पढ़ रही हूँ, मेरा खामिंद जो है वो कई महीने से लश्कर इस्लाम के साथ मुहाज पे गया। तो खामोश हो गए, वापस चले गए, फौरन सीधे अपनी बेटी हफ्सा के पास गए, फिर उनसे पूछा कि एक शादीशुदा औरत अपने खामिंद की जुदाई को ज्यादा से ज्यादा कितनी देर तक बर्दाश्त कर सकती है। उन्होंने बताया 4 महीने। 4 महीने के बाद शादीशुदा औरत के लिए अपने खामिंद की जुदाई बहुत ज्यादा बेचैनी और इस्तराब का बायस होती है। तो हजरत उमर ने हर जगह लश्कर इस्लाम के जितने भी तमाम उमरा को हुक्म भेज दिया कि जितने शादीशुदा मुजाहिदीन है इनको 4 महीने बाद घर जाने की इजाजत दी जाए। अब इस खातून का खामिंद मुहाज से रुख्सत होकर मदीना पहुंचा तो पहले सलाम अर्ज करने के लिए अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में हाजिर हुआ और आपने इरशाद फरमाया जाओ और रुख्सत के अय्याम अपने घर में गुजारो। यानी इतना हर एक फर्द का किस तरह एहसास और हमदर्दी, और ये नहीं कि उसको डांटे और उसको कहें कि जो है तुम ऐसा तुम सोच रही है, ऐसे अशार पढ़ रही हो या ऐसा तुम कैसे कर रही हो। इसी तरह एक दफा चंद ताजिर जो थे वो आए हुए थे, उन्होंने कहीं पड़ाव डाला हुआ था तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सईदना अब्दुर्रहमान ये थे, तो उन्होंने हजरत उमर ने इनसे फरमाया कि हम आज रात इन ताजरों का पहरा देते हैं ताकि इनका सामान चोरी ना हो। तो उन्होंने सारी रात पहरा दिया और सारी रात नवाफिल अदा करते रहे। इस दौरान सईदना उमर ने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी, बच्चे की मां से कहा कि अपने बच्चे के साथ कुछ सलूक कर, इसको कुछ दूध पिला, अल्लाह से डर, ये बात कह के अपनी जगह वापस चलेगा। लेकिन बच्चे के रोने की आवाज फिर आ रही है और जोर से आ रही है, फिर जाके उसको कहा कि कुछ ख्याल कर इस बच्चे का, इसको चुप करा, इसको दूध पिला, लेकिन फिर आ रहे हैं, फिर वो बच्चा उसी तरह रोता जा रहा है, उससे भी ज्यादा चीख चीख के रो रहा है। फिर गुस्से से आए और उसकी माँ से कहने लगे, तुम तो इतनी सख्त दिन माँ हो, बच्चा मुसलसल रो रहा है, तुम्हें कोई परवाह नहीं? उस औरत ने कहा, अल्लाह के बंदे, मैं इस बच्चे का दूध छुड़ा रही हूँ, इसलिए ये रो रहा है, ये जिद कर रहा है, दूध छोड़ना नहीं चाहता। तो उन्होंने फरमाया कि हजरत उमर ने, कि तुम इसका दूध क्यों छुड़ा रही हो? उसने कहा, मीरुल मोमिनीन की तरफ से, उमर की तरफ से इस बच्चे का वजीफा मुकर्रर होता है जो अपनी माँ का दूध छोड़ देता है। यानी उन्होंने एक रखा हुआ था ना कि हर बच्चे का वजीफा मुकर्रर था, लेकिन वो उस एज पे जाके वजीफा मिलना शुरू कर होता था जब वो माँ का दूध पीना छोड़ देता था। तो मैं कहने लगी, मैं इसलिए छुड़ा रही हूँ ताकि इसका वजीफा मुकर्रर हो जाए। तो उमर ने इस खातून से पूछा, इसके दूध पीने की कितनी मुद्दत बाकी रह गई? उसने कहा, अभी तो चंद महीने बाकी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अभी से छोड़ दे ताकि वजीफा हो जाए। उमर रजी अल्लाह तआला ने इस खातून से कहा, अल्लाह की बंदी, इसका जल्दी दूध ना छुड़ा, इसको अपनी मुद्दत पूरी करने दे। फिर वहां से आ गए और अल्लाह अकबर, सुबह जब फजर की नमाज पढ़ाई तो सहाबी रसूल फरमाते हैं कि नमाज में इतना रोए कि हमें यही नहीं समझ आ रही थी कि ये पढ़ क्या रहे हैं, ये कौन सी सूरत पढ़ रहा है। जब सलाम फेरा तो फिर नमाजियों से मुखातिब होके बोले, उमर ने ये क्या गजब कर दिया, मुसलमानों के कितने बच्चों को मार दिया, उमर कयामत के दिन अल्लाह सुबहाना तआला को क्या जवाब दे? फिर ऐलान करा दिया कि कोई भी अपने बच्चे को उसकी मुद्दत खत्म होने से पहले दूध ना छुड़ाए। हम हुकूमत की तरफ से हर बच्चे के पैदा होते ही उसका वजीफा मुकर्रर करते हैं, और ये सारे सूबों में ये हुक्मनामा भेज दिया कि पैदाइश से वजीफा मुकर्रर होगा। देखने कितनी बड़ी बात, हर बच्चे का पैदाइश से वजीफा मुकर्रर हो जाता है। और ये किस तरह से हुआ कि देखें, अपनी पॉलिसी उन्होंने चेंज कर दी ना, एक फर्द की वजह से, कि एक फर्द को मुश्किल में देखा और अपनी पॉलिसी। और देखिए ना, ये भी कि खुद को पता होना, खुद खबरगिरी रखना इन सारे कामों की, फिर उसके ऊपर एक्शन लेना। एक बच्चे को भी रोता नहीं देख सके भूख से, और यहाँ पे भूख से बच्चे मर भी जाए राया में तो कोई फर्क नहीं। इसीलिए तो फरमाया था कि जिस वक्त हजरत उमर ने देखा था, हजरत अली ने देखा था कि इस तरह से बैतुल माल के ऊंट के पीछे भागे जा रहे हैं, तो इनसे फरमाया था कि आप क्यों जा रहे हैं, आप अपने किसी नौकर को, गुलाम को भेज दे। तो उस वक्त फरमाया था कि नहीं, अगर एक ऊंट भी यहां से चला जाता है तो उमर से इसके बारे में पूछूंगी। उस वक्त हजरत अली ने फरमाया था कि आपने इतने हाई स्टैंडर्ड रख दिए कि कौन आपके पीछे इन स्टैंडर्ड को मीट कर सकेगा, आपने तो अपने आने वाले खुलफा को जलील कर दिया कि आप खुद भागे फिर रहे। तो तब फरमाया था कि फुरात के किनारे एक बकरी का बच्चा भी गुम हो जाता है तो उमर से इसके बारे में पूछो, उमर से पूछा जाएगा। अब ये देखिए ना, हर चीज का एहसास करना, एक छोटी से छोटी चीज, एक छोटा सा बच्चा रो रहा है, एक औरत है जो अपने हामिद की जुदाई के अंदर अशार पढ़ रही है, लेकिन उसकी वजह से पॉलिसीज बना देना, उसका इतना एहसास करना, इस चीज को समझना, इससे पता चलता है कि अपनी राया का हर दर्जा ख्याल रखते थे। हर वक्त ये उनको अंदेशा रहता था, राया कहीं परेशान तो नहीं है, कहीं कोई भूखा तो नहीं है, कहीं कोई बीमार तो नहीं है, अपने आप को तावन के लिए पेश कर देते थे। अब आप खुद सोचे, वो जो औरत थी, वो जो बूढ़ी औरत थी जिसका मैंने आपको वाकया बताया था, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह उनके वाकये में, ये वो अंधी थी जिसके घर का काम जाके ये किया करते थे, उनके बाद किसने किया है? हजरत उमर ने। तलहा कहते हैं कि एक दफा मैं इनके पीछे पीछे चला, मैंने कहा देखो कहाँ जाते, चुपके पीछा करता रहा। एक घर में गए, काफी देर बाद निकले, जब कहते मैं जाके, फिर मैंने जब वो चले गए तो मैंने घर में जाके नॉक किया, तो एक बूढ़ी औरत थी, अंधी औरत थी, उससे पूछा ये जो अभी निकल के गया कौन था? वो कहने लगी, कोई आदमी है जिसको नेकी करने का शौक है, ये आता है मेरा खाना पकाता है, मेरा घर साफ करता है और फिर चला जाता है। उसको ये भी नहीं बताया मैं खलीफा हूं। और पूछा तलहा ने कि ये कितने अरसे से आ रहा है? वो कहने लगी, कई साल हो गए हैं, अल्लाह अकबर, कई साल हो गए हैं, सुभान अल्लाह। तो हमें इससे पता चलता है कि यानी कितना ज्यादा एहसास था। एक दफा गश्त कर रहे थे तो देखा कि एक घर के अंदर से गोलगप्पाड़े की आवाज आ रही है, तो पूछा अपने साथ एक और सहाबी थे, उनसे पूछा कि ये लगता है कि कोई महफिल जमी हुई है, किसका घर है ये? वो कहने लगे कि मुझे तो नहीं पता, फरमाने लगे मुझे लगता है रबिया बिन उमैया का घर है, और यहाँ पे जरूर शराब का दौर चल रहा है। तो हजरत अब्दुर्रहमान कहने लगे मुझे लगता है कि हमें तजस्सुस नहीं करना चाहिए, क्योंकि तजस्सुस करने से अल्लाह ताला ने मना किया है। तो कहने लगे हाँ, ये बात सही है, और छोड़ दिया वहां से। एक दफा एक जगह से गुजर रहे थे, देखा एक बूढ़ा आदमी इसी तरह गश्त कर रहे थे, शराब पी रहा है और गा रहा है और गलत काम कर रहा है। तो फरमा रहे थे इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डर, तुझे अपनी मौत का ख्याल नहीं है कि तुझे जाना नहीं है, इस बुढ़ापे में ये काम कर रहा है। वो कहने लगा तुम अल्लाह से डरो ना, मेरी मेरे घर की चार दीवारी में तुम देख, क्योंकि लंबे बहुत थे ना, जब गश्त करते थे लोगों के घरों के ऊपर से, दीवारों के ऊपर से उनको नजर आ जाता था, तो मेरी यानी प्राइवेसी के अंदर, मेरे घर के अंदर तुम जासूसी कर रहे हो। तो अपना सर नीचे झुका लिया, फरमाया हाँ ये सच कहता है, मुझे नहीं देखना चाहिए। और वो आदमी को अल्लाह ने फिर हिदायत दे दी। ठीक है, उनको ये नहीं होता था कि मैं, मुझे किसी ने अगर कह दिया तो मेरी तो शान के खिलाफ हो गया, मुझे किसी ने क्यों कहा, मैं किसी की इतनी जरूरत क्या है कि वो मुझे बताए कि मैं क्या गलत कर रहा हूं, चलो अपना काम करूं। नहीं, ऐसा एहसास करते थे। अल्लाह अकबर। तो हम देखते हैं इसी वजह से वो हर दिन अजीज थे, इसी वजह से कहीं पे भी जाते थे तो उनको कोई परवाह नहीं होती थी, इसी वजह से कहीं पे भी बिस्तर लगा लेते थे, कहीं पे भी अपना मतलब लेट जाते थे, वो आराम करने के लिए बैठ जाते थे। तो उनको कोई यानी किसी का वो नहीं था कि कोई मुझे हार्म करेगा, कोई मुझे नुकसान देगा। अल्लाह अकबर। और ये जो अब्दुल्ला बिन उमर के ऊंट वाली बात बताई है ना मैंने, वो सरकारी चरागाह थी जिसमें उन्होंने चराया था, इसलिए वो ऊंट मोटा ताजा हो गया था, तब भी उन्होंने कहा था कि तुम इसका असल कीमत ले सकते हो लेकिन इसका मुनाफा नहीं ले सकते, क्योंकि वो सरकारी चरागाह में गया है। एक दफा हजरत उस्मान जो थे वो मदीना की बलाई जानेब अपने माल के गोदाम में थे, सख्त गर्मी थी, उन्होंने देखा एक आदमी नजर आ रहा है दो ऊंट हाँक के लेके जा रहा है, इतनी शदीद गर्मी थी कि उसकी वजह से जमीन तप रही थी। वो उस्मान रजी अल्लाह तआला ने खुदी से कहते हैं ये आदमी बड़ा अजीब है, ये मदीना में ठहर जाता जब जरा गर्मी की शिद्दत कम हो जाती तब चल पड़ता। जब वो आदमी अपने ऊंट हांकता व करीब आया तो उस्मान रजी अल्लाह तआला ने अपने गुलाम से कहा देखना ये कौन है, गुलाम ने जाके देखा तो कहा कि ये जनाब इसने चादर लपेट रखी है और अपने ऊंट हांक के ले जा रहा। फिर जब वो और करीब आया तो गुलाम ने गौर से देखा तो देख के हैरान रह गया, ये अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब है। गुलाम ने कहा ये तो अमीरुल मोमिनीन है। उस्मान रजिला तआला ने गोदाम से बाहर सर निकाला तो गर्म तरीन लू का झोंका था, उन्होंने अपना सर अंदर कर लिया। जब अमीरुल मोमिनीन उनके बराबर आ गए तो पूछा इतनी सख्त तरीन लू में दोपहर के वक्त आप क्यों निकले हैं, जरा दिन ढल गया होता, गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी आ गई थी तब निकल पड़ते। तो फरमाए सदके के दो ऊंट हैं, बेवाओं गरीबों मिस्कीनों के होता है ना सदके का, ये दो ऊंट दूसरे ऊंटों से पीछे रह गए थे, दूसरे सदके के तमाम ऊंट चले गए थे, मैंने चाहा इन दो ऊंटों को भी चरागाह में इनके पास पहुंचा दूं, मुझे डर था कि अगर ये जाया हो गए अल्लाह मुझसे इनके बारे में पूछेगा। तो उस्मान ने फरमाया अमीरुल मोमिनीन ना आप साए में आ जाएं, पानी वगैरह पी लें, ये ऊंट चरागाह तक हम पहुंचा देंगे। तो सैयदना उमर ने कहा है उस्मान आप साए में बैठे। अल्लाह अकबर। उस्मान रजी अल्लाह तआला ने ये सुन के फरमाने लगे जिसने किसी अमीन अमानतदार को देखना हो ना वो इनको दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमें इनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आज यहां तक कर लेते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।